وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو 20 نمبر 290 یہ ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، 290 مکمل ہو گئی تھی کل. تو آج 291 حدیث سے شروع کرتے ہیں. اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے کہ قیامت کے قریب کے بعض لوگوں کا ثواب اول والوں کی طرح ہوگا. اس کی عبارت ہے کہ ان عبد الرحمن بن العلا الحضرمی رحمہ اللہ تعالی حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، کہ مجھے بیان کیا اس نے جس نے کہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ کہتے ہوئے، یقولو سے مراد یہاں پر کہتے ہوئے سے کریں گے. پیج 344، اچھا پی ڈی ایف ہے شاید، یہ نمبر ہوگا. ویسے روضۃ الطالبین کے پیج 455 ہے، کہ انہ سیکون فی آخر ہذہ الامتی قوم لهم مثل اجر اولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون اهل الفتن. آج لگتا ہے کچھ پرابلم ابھی تک چل رہی ہے اس کے اندر، تو صرف ایک ہی ایکسٹرا یوزر آئے ہیں، باقی تو ایڈمنز ہی ہیں اس کے اندر. آصف صاحب ایک دفعہ پھر اس کو کوئٹ کر کے دوبارہ آئے. چلیں آپ میٹنگ کلوز کریں. اس کا ترجمہ باب محاورہ جیسے کہ روضۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب اس امت کے آخری دور میں ایک جماعت پیدا ہوگی جس کا ثواب اس امت کے ابتدائی دور کے لوگوں کے ثواب کی مثل ہوگا. اس جماعت کے لوگ مخلوق خدا کو اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکیں گے اور فتنہ برپا کرنے والوں سے لڑیں گے. اب اس کی لفظی تحقیق میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال فعل ہے اور اس کا فاعل النبی، اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا تھا کہ جملہ معترضہ کے طور پر لے کر آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا، جو کہ اس مضمون سے تعلق نہیں رکھتا، سو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی آخری ہذہ الامتی. انہ تو انا تو حرف مشبہ بالفعل آپ کو بتاتے آ رہے ہیں پچھلے دو یعنی کئی دنوں سے، کل بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی شاید. تو انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ انا کے ساتھ کبھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہو کی ضمیر ایسی ہوتی ہے کہ یوزلی تو ہوتا ہے نا کہ یہ پروناؤن شروع ہونے میں نہیں، یعنی بات پروناؤن سے شروع نہیں کرتے بلکہ بات ناؤن سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پروناؤن بعد میں لے کر کے آتے ہیں. جیسے آصف از اے گڈ مین، ہی گوز ٹو اسکول، رائٹ. تو ہی جو ہے وہ بعد میں آئے گا، آپ جملے کے شروع میں ہی سے شروع نہیں کرتے، پہلے آپ اصل میں اس بندے کا نام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ضمیر ہے تو یہ دیکھیں آپ جملے کے شروع میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر جو ہے نا وہ ضمیر شان کہلاتی ہے، اور یہ بیسکلی صرف ایمفیسس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک है, यानी इसका मतलब यही है कि ये एक प्रोनाउन है जिसको के जो कि एक नाउन की तरफ पॉइंट भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन्नहू का तर्जुमा बेशक से ही करेंगे बस। ठीक है, जैसे इन्ना का तर्जुमा बेशक से करते हैं उसी तरह इन्नहू का तर्जुमा भी बेशक से करते हैं। सा यकूनु, तो सीन जो है वो सीन एक हर्फ है जो कि फेले मुजारे के साथ लगता है और ये फ्यूचर के मानी देता है। ठीक है, यानी इस फेले मुजारे को ये फ्यूचर के लिए लॉक कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका तर्जुमा अनकरीब से करते हैं। ये दो अल्फाज होते हैं सीन और सौफा, दोनों का एक ही मतलब होता है अनकरीब। तो अनकरीब यकूनु, काना यकूनु का मतलब क्या था, होना, और यकूनु इसका फेले मुजारे है तो अनकरीब होगा। ठीक है, या होंगे। फी आखिरी हाजिर उम्मती, फी हर्फ जर है और आखिर ये लास्ट को कहते हैं, एंड को, राइट। आखिरी हाजिर उम्मती, तो आखिर का जो लफ्ज है ये फी की वजह से हालत जर में चला गया। ठीक है, तो ये आखिरी हो गया। ओके, फिर आखिरी के बाद हाजिर उम्मती, ठीक है, तो ये हाजिर उम्मती जो है ना ये मुजाफ इलैही ही बन रहा है आखिर का। ठीक है, तो इस वजह से ये भी हालत जर में है, तो आखिर मुजाफ बन रहा है और हाजिर ही मुजाफ इलैही ही बन रहा है। चला गया। ठीक है, क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया था? तो हाज ही इस इशारा की वजह से अलउम्मती का लफ्ज जो है वो हालत जर में चला गया। ठीक है, तो हाजिल उम्मती ये उम्मत। ठीक है, और फिर हाजिल उम्मती पूरा का पूरा जो है ना वो मुजाफ इलैही बन गया आखिरी का, तो आखिरी हाजिल उम्मती यानी इस उम्मत का आखिर, इस उम्मत का आखिर। ठीक है, तो फी आखिरी हाजिल उम्मती, इस उम्मत के आखिर में। ठीक है, इस तरह से बैक ट्रैक करके हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं। ठीक है, तो फी आखिरी हाजिल उम्मती कौमुन, कितनी डिस्टर्ब हुई, मैंने वैसे तो माइक बंद किया था क्योंकि वो मोसीजर चलनी शुरू हो गई थी फोन के ऊपर गलती से, तो उसके बाद डिस्टर्बशन कैसी रही थी, यानी एक आवाज कट रही है या कोई और किस्म की डिस्ट्रक्शन है, क्या मतलब है? नो साउंड। अच्छा, नो साउंड इज क्लियर। अच्छा, नाउ साउंड इज क्लियर। चले फिर मैं बस तर्जुमा शुरू करता हूँ। ये थ्री अनाना सेंटर हैं कौन? आसिफ, आप अपने नाम से लॉग इन हैं कि थ्री अनाना सेंटर से लॉग इन हैं? थोड़ा रुक रुक के आ रही है, मैं जो एक देखता हूँ। जिसको बंद ही कर रहे हैं, मेल वाले नहीं ना। अच्छा चलिए फिर ट्राई ट्राई करते हैं। फैन की आवाज़ है, तो फैन की आवाज़ तो रोजाना होती है, पहले तो आप लोग कह रहे थे कि इसमें नहीं होता शोर। अच्छा, अभी तो एक्चुअली मैं फैन बंद नहीं कर सकूंगा बिकॉज वाल साहब कमरे में बैठने में, तो चलिए कोशिश करते हैं दोबारा से। ये जो मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा था, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहू, तो इन्नहू जो होता है उसका तर्जुमा भी इन्ना जैसे करते हैं ना, इन्ना का तर्जुमा बेशक से, तो उसी तरह इन्नहू का तर्जुमा भी बेशक से ही करते हैं। और ये जो जमीर लगी होती है इसके साथ, तो इस जमीर का कोई कोई मर्जा नहीं होता, यानी ये प्रोनाउन जो है इसका कोई नाउन नहीं होता, बस ये बेशक के मानी में आता है, तो इन्नहू का तर्जुमा बेशक। सयकूनू में सीन जो है वो अंतरीब के मानी देता है, और यकूनू फेले मुजारे है काना का, तो काना यकूनू का मतलब क्या था कि होना, ठीक है। यकूनू का मतलब अंतरीब होगा या होंगे, यहाँ पे क्योंकि आगे कॉन्टेक्स्ट बन रहा है लोगों का, तो अनकरीब होंगे फी आखिरी हाजिल उम्मती, ठीक है। तो फी हर्फ जर हो गया और उसकी वजह से आखिर का जो लफ्ज है वो हालत जर में चला गया है, तो फी आखिरी। उसके बाद आखिरी का जो लफ्ज है वो मुजाफ बन रहा है हाजिल उम्मती का, ठीक है। तो हाजिल उम्मती का तर्जुमा क्या होता है, ये उम्मत, जैसे कि आप पता ही होगा कि हाजा मुजक्कर के लिए इसे इशारा होता है और हाजही मुअन्नस के लिए इसे इशारा होता है, ठीक है, इशारा करने का इसम, तो हाजा और हाजही। तो हाजही के बाद या हाजा के बाद जो इसम आता है ना वो हालत जर में चला जाता है, अगर वो अलिफ लाम के साथ हो, कुछ उसमें कवायद होते हैं। तो ये अल उम्मती जो हालत जर में है वो हाजही की वजह से है, ठीक है। तो हाजिल उम्मती का मतलब हो गया ये उम्मत, और ये उम्मत का जो लफ्ज है वो पूरा का पूरा मुजाफ इलैही बन रहा है आखिरी का, तो आखिरी मुजाफ और हाजिल उम्मती मुजाफ इलैही, ठीक है। तो इसका तर्जुमा क्या बना, इस उम्मत के आखिर या इस उम्मत का आखिर, ठीक है, इस उम्मत का आखिर, और फी लगा करके इस उम्मत के आखिर में, ठीक है। सयकूनु फी आखिरी हाजिल उम्मती, इस उम्मत के आखिर में होंगे, ठीक है, इस उम्मत के आखिर में होंगे, क्या होंगे, कौमुन एक कौम, ठीक है, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे या एक कौम ऐसी होगी, एक जमात ऐसी होगी, ठीक है। कौमुन से मुराद कौम, लोग, जमात। लहुम उनके लिए, लाम हर्फ जर है और हुम जमीर है, ठीक है, जो कि जमा मुजक्कर गाइब की जमीर होती है, ठीक है। तो लहुम का मतलब उनके लिए मिसलु अजर अव्वलिहिम, मिसलू का मतलब इक्वल, इक्वल या मिसाल, जैसे कि सिमिलर, मिसल का मतलब क्या होता है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मिसल अजरे अव्वलिहिम, अजर का मतलब होता है रिवॉर्ड, ठीक है, जो यानी एक अच्छे माने में इस्तेमाल करते हैं अजर का लफ्ज, ठीक है। अच्छा, तो ये यानी रिवॉर्ड हो गया, तो अजर की मिसल, मिसलु अजरे, ये भी मुजाफ मुजाफ इलैही बन रहा है, तो अजर की मिसल अव्वलिहिम, मिसलु अजरे अव्वलिहिम, यानी उनके अव्वल के अजर के मिसल, ठीक है। तो ये भी जो है ना अगेन मुजाफ मुजाफ इलैही का पूरा एक एक वो बन रहा है, सेट बन रहा है, ठीक है, अजरे अव्वलिहिम। इसमें अव्वल का लफ्ज भी मुजाफ है और हम उसका मुजाफ इलैही है, ठीक है। फिर मुजाफ मुजाफ इलैही जो मिल गए ना, अव्वलिहिम मुजाफ मुजाफ इलैही मिल गए, तो मिल करके ये पूरा का पूरा मुजाफ इलैही बन गए, किसका मुजाफ इलैही, अजर का मुजाफ इलैही, ठीक है। फिर अजर और उसका मुजाफ इलैही ये दोनों मिल करके फिर मुजाफ इलैही बन गए मिसलु का, ठीक है। तो इस तरह से देखें कैसे ये यानी मुजाफ मुजाफ इलैही की पूरी चेन बन रही है, ठीक है। यानी मिसलु पहला मुजाफ है, फिर अजरी जो है वो उसका मुजाफ इलैही है, फिर अजरी मुजाफ बन रहा और अव्वली उसका मुजाफ इलैही बना, फिर अव्वली मुजाफ बना और हम की जमीर उसका मुजाफ इलैही बनी, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको बैक ट्रैक भी करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कि अव्वल का मुजाफ, अव्वल मुजाफ है और हम उसका मुजाफ इलैही है, फिर मुजाफ मुजाफ इलैही मिल करके मुजाफ इलैही बना अजर का, तो अजर मुजाफ और अव्वलिहिम इसका मुजाफ इलैही, ठीक है। फिर अजर और अव्वलिहिम दोनों मिल करके मुजाफ इलैही बने मिसलू के, ठीक है। तो तर्जुमा इसका क्या बना कि उनके अव्वल के अजर के मिसल, उनके अव्वल के अजर के मिसल, ठीक है। तो एक कौम होगी कि उनके लिए जो अजर होगा ना वो उनके अव्वलीन जो लोग थे उनके अजर के मिसल होगा कि जैसा होगा, ठीक है। और वो क्यों होगा ऐसा, यअमुरून बिलमारूफी वयनहून अनिल मुनकरी वयुकातिलून अहल अलफितनी, क्योंकि उनके अंदर ये तीन सिफात होंगी, ठीक है ना। कौन सी तीन सिफात, پہلی یا امرونا بالمعروف، کہ وہ امر کریں گے معروف کا یعنی نیکیوں کا حکم کریں گے. یا امرونا، یہ امرا یا امرو فعل ہوتا ہے، امرا ماضی یا امرو مضارع. پھر یا امرو کو اگر آپ گردان میں چلائیں ٹیبل میں تو یا امرونا جمع کا صیغہ بنتا ہے، جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، تو وہ امر کرتے ہوں گے بالمعروف. معروف سے مطلب ہوتا ہے نیکی، نیکی جو ہوتی ہے نا، نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ معروف ہوتی ہیں. یہ ہم ویسے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی ایک حدیث کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات کر چکے ہیں، کہ وہ نیکیاں جو کہ یعنی متفق علیہ ہوتی ہیں، سارے لوگ اس پر متفق ہوتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ معروف کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی اس کو نیکیاں سمجھتا ہے، ہر مسلمان ان کو نیکیاں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سچ بولنے کو تو ہر انسان نیکی سمجھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کو تو صرف مسلمان ہی نیکی سمجھتا ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے کہ نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہر مسلمان واجب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے تحت جو ہے وہ صرف امام کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہوتی ہے اور مقتدیوں کو نہیں کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امام شافعی کے نزدیک امام کو بھی کرنی ہوتی ہے اور مقتدیوں کو بھی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نا مقتدیوں کا جماعت کے اندر، یہ معروف میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ معروف میں شامل نہیں ہے. اس وجہ سے نا آپ کسی کو پکڑ کے اس کو حکم نہیں کر سکتے کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو. ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ فقہا کا اس بات کے اوپر اختلاف ہے اور آپ اس اختلاف کے اوپر کسی کو فورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو معروف میں یہ اجتہادی اختلافات والے مسئلے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، معروف کے اندر وہ والی باتیں آتی ہیں جو کہ متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے، جو سے جیسے کہ ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے، تو یامرون بالمعروف، وہ امر کریں گے معروف باتوں کا، وینہون عن المنکر، اور منع کریں گے منکر سے. تو ینہونا کیسے نکلا؟ نہا ینہا، نہا نون ہا یا. ٹھیک ہے، نہا یہ اصل میں تھا نہا یا. ٹھیک ہے، نون دو چشمی ہا اور یا گول وہ جو چھوٹی یا ہوتی ہے، نہا یا ینہیو تھا یہ اصل میں، نہا یا ینہیو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ فعل ماضی کے اندر جو یا ہوتا ہے اس کو الف مقصورہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے فعل ماضی کے اندر عربوں کے نزدیک، تو اس کو الف مقصورہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہ نہایا سے نہا بن جاتا ہے. اور ینہیو جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو واو ہوتا ہے نا اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو وہ ینہا، وہ ایکچولی واو کو پہلے یا سے کنورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ساکن کر دیتے ہیں یا کو، تو وہ نہا ینہا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ینہا تھا یہ اصل میں واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ینہا. ٹھیک ہے، پھر اس کو گردان میں چلایا تو وہ ینہا ینہانے ینہونا، ایسے اس کی گردان چلتی ہے. تو یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف کا صیغہ ہوا ینہونا. عن المنکر، منکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہو، انکار کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو ان کو منکر کہتے ہیں. یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، آبجیکٹ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انکر ینکرو انکارن فہوا منکرن، ایسے اس کی سب صغیر بنتی ہے. آپ کو باب افعال کا تھوڑا شاید میں نے بتایا ہے، اکرم یکرم اکرامن فہوا مکرمن، بالکل اسی پیٹرن پر یہ ہے، انکر ینکرو انکارن فہوا منکرن. اب اس کا مجھول کیسے ہوتا ہے؟ انکر ینکرو انکارن فہوا منکرن، تو منکرن جو ہے وہ اسم مفعول کا صیغہ بنا. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ الف لام لگا دیا تو وہ المنکرو رہ گیا، المنکرو، کیونکہ الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے تنوین گر جاتی ہے، تو منکرن سے وہ منکرو رہ گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ المنکری کیوں ہے؟ کیونکہ ان ہے اس سے پہلے، اور ان حرف جر ہوتا ہے، تو حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا، تو اس کا لاسٹ لیٹر جو ہے وہ یعنی اس کے نیچے زیر لگا دیا، تو ان المنکری. ٹھیک ہے، تو منکر سے منع کریں گے، یہ اس کا ترجمہ ہوا. وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، اور وہ قتال کریں گے، قاتلا يُقَاتِلُو. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ورب کیا ہے؟ قاتلا ماضی ہوا اور يُقَاتِلُو مضارع ہوا. तो युकातिलू को गर्दान में चलाएं तो युकातिलूना जमा मुज़क्कर गायब का सीगा हुआ, तो युकातिलूना अहल फितने वो कताल करेंगे फितन वालों से, यानी वो लोग जो के फितना फसाद बर्पा करने वाले होंगे उनसे ये कताल करेंगे, लड़ेंगे उनसे। अहल का लफ्ज़ जो होता है वो खानदान के लिए भी इस्तेमाल होता है और किसी यानी किसी निस्बत रखने वालों के लिए भी अहल का लफ्ज़, जैसे कि अहले मशवरा हम कहते हैं ना कि ये बंदा जो है वो मशवरे का अहल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सलाहियत है कि ये मशवरा दे सकता है, ठीक है। अल्लाह ताला के लिए कुरान में आता है हुआ अहलु तक्वा, ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है वो तक्वा का अहल है, यानी अल्लाह ताला इस बात का अहल है कि उनसे डरा जाए, तो अहलु तक्वा आता है। वह अहलुल मगफिरा, ठीक है, कि अल्लाह ताला ही जो है वो मगफिरत करने के अहल है, ठीक है। तो अहल का लफ्ज जो है वो इस तरह से थोड़ा सा सिमिलर मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अहलुल फितनी यानी वो लोग जो के फितन करने वाले हैं, ठीक है। तो अलफितन के बारे में नीचे लुगात में लिखा है कि जमा अलफितनत, अलफितनती यानी अलफितनतु, असल में इसकी इसका वाहिद होगा, उसकी जमा फितन है, ठीक है। बमानी आजमाइश, गुमराही, रुसवाई, ये सारे मानों में आता है। वैसे आजमाइश इसका उमूमी मतलब होता है, स्पेशली जब वो कुरान की आयत है ना कि इन्ना औलादुकुम, क्या है वो आयत, कि तुम्हारे अहलो आयाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, ठीक है। तो उसको लोग बड़ा अब्यूज़ करते हैं या उसको बड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये तुम्हारी औलाद और तुम्हारी बीवी ये तुम्हारे लिए गुमराही है, ठीक है। नहीं, गुमराही मतलब नहीं वहाँ पर, वहाँ पर फितने का मतलब गुमराही नहीं है बल्कि आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, ये बीवी अल्लाह ताला की नेमत है, जिसके पास बीवी नहीं होती, ठीक है, वो हराम में पड़ जाता है, राइट। तो अल्लाह ताला की नेमत हुई कि जी हलाल के जरिए से इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करे और अपनी जरूरियात उसकी जिंदगी जो है वो एक अच्छी गुजरे, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, उसी तरह औलाद अल्लाह ताला की नेमत है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। बीवी के होने से बहुत सारे लोग इनकार कर सकते हैं। हाँ, इन्ना अमवालुकुम व औलादुकुम, अच्छा ठीक। तो ये सब तुम्हारे लिए क्या है, आजमाइश है कि तुम इन नेमतों का शुक्र अदा करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी में तो नहीं पड़ जाते कि जी औलाद को खुश करने के लिए नाफरमानी में पड़ गए, ठीक है। तो ये सब जो है वो फितने के मानी होते हैं। और फितना तो अशद मिन अल कत्ल, ये भी एक आयत का हिस्सा है कि फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा शदीद है। तो यहाँ पर फितने से मुराद क्या है कि वो जो फितना फसाद वाला फितना, ठीक है। तो वो ये वो था जिसमें कि जब मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मुसलमानों को रोका था बैतुल्लाह का तवाफ करने से या उमरा करने से, तो ये वो एक वो कॉन्टेक्स्ट था, या एक्चुअली नहीं, वो ये वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था, जिसके वो था जिसमें कि जो महीने थे जिनमें के में कत्ल वो जंग करना ममनू था, ठीक है। तो मुसलमानों से उस महीने के अंदर ना कुछ ऐसा मामला हो गया था कि कुछ लोग कत्ल हो गए थे मुसलमानों के हाथ में, तो काफिरों ने इसके ऊपर बहुत शोर मचाया था, ठीक है, कि ये किस किस्म के लोग हैं कि इन्होंने जो है वो इस बात को खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, उसी को तोड़ डाला कि इन शहरुल हराम के अंदर इन्होंने कत्ल कर डाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, फितना जो तुम लोग फितना फैलाया हुआ ना, ये कत्ल करने से ज्यादा शदीद है। जो तो चंद मुसलमानों से जो चंद कत्ल हो गए, तो इसके बारे में इतना शोर मत करो। तशरी, अगरचे कि ये सारी उम्मत खैर उम्मत है, जैसा कि इरशाद बारी तआला है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, के तुम हो बेहतरीन उम्मत, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर। उखरिजत लिन्नास, के तुम इंसानों को निकालते हो, यानी गुमराही से निकालते हो, अंधेरों से निकालते हो। तो इस आयत में ये बात वाज़े है कि ये उम्मत जो है वो तमाम उम्मतों से ज़्यादा बेहतर उम्मत है, और इस तरह इस उम्मत के पहले हिस्से की फजीलत और बुजुर्गी शम्स नहार की तरह आया है, यानी नहार कहते हैं दोपहर को, ठीक है, दिन को, और शम्स जो दिन के अंदर सूरज निकला होता है, तो जिस तरह दिन में सूरज निकला होता है ना, वो हाथ को नजर आ रहा होता है, वो किसी से छुप नहीं सकता, उसी तरीके से सहाबा कराम की फजीलत जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कल हमने काफी तफसील से बात करी थी। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के आखिरी हिस्से की फजीलत और अहमियत को बयान फरमाया है। चुनांचे एक रिवायत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से खातिब होते हुए फरमाया कि तुम ऐसे जमाने में हो कि जो तुमसे कोई 10वां हिस्सा मामूर बिही का छोड़ दे तो हलाक होगा, फिर ऐसा जमाना आएगा कि अगर उनमें से कोई 10वां हिस्सा मामूर बिही का पूरा करेगा तो निजात पा जाएगा, यानी अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे और वो निजात पा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हमने चंद क्लासेस पहले काफी तफसील से बात करी थी। इसका खुलासा ये है कि 10वां हिस्सा निजात वाला अगर हम देखें आज के दौर में, तो एक मोहतात एनालिसिस से ऐसा लगता है कि जो इस वक्त बहुत नेक लोग हैं, जो कि नेकी के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, मदारिस का माहौल जो कि खुसूसन होता है, ठीक है, जहाँ पर के गुनाहों के मौके उतने नहीं होते जितने के बाहर होते हैं, ठीक है। यानी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस के अंदर बच्चों को मोबाइल फोन्स ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। तो मोबाइल फोन के बगैर इस दौर के अंदर जो बच्चे रहते हैं, तो कितना बड़ा फितना इस दौर का, तो वैसे ही कट ऑफ हो गया, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे कोई यानी बदनजरी के मौके नहीं होते, स्पेशली जो जरा दूर दराज के मदारिस होते हैं तो वहाँ पर, ठीक है। तो ये मदारिस के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं और उलमाए कराम अशाइख जो कि कसरत जिक्र का एहतमाम करते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के बारे में आज के दौर के अंदर कहा जा सकता है कि ये लोग जो है वो 20-30-40% दीन के ऊपर अमल करने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग वैसे दीन यानी वाकई मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को गुनाहों से बचा रहे हैं, तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो 10% दीन पर अमल करने वाले हैं। और हम जैसे लोग जो कि अभी कहते हैं ना नए नए दौलती है, ठीक है, कि नई नई दौलत हाथ आई होती है, ठीक है, तो दीन की दौलत अल्हम्दुलिल्लाह हाथ आई है, तो दीन के बारे में कुछ फिक्र करनी शुरू करी है और कुछ पढ़ना पढ़ाना शुरू किया है, कुछ करना कराना शुरू किया है, तो हम अपने आप को अगर आप जरा सच सच यानी कहते हैं ना गरेबान झांक देखें, तो हम किसी भी सूरत में 10% वालों में अपने आप को शुमार नहीं कर सकते। हम शायद हैं 2%, 3%, 4% वालों में, उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी हमें बहुत काम करना है, इसके लिए मकसद खाली इसका कहने का ये है कि अभी बहुत काम बाकी है। तो फरमाते हैं कि जो 10वां फीसद भी पूरा कर लेगा ना, तो वो निजात पा जाएगा। यहाँ पर मामूर भी से मुराद अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है, ठीक है, कि ये तो ऊपर वाली हदीस के अंदर फरमाया कि मामूर भी से मुराद अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ही है। इस हदीस में भी रिसालत और हालिया का फर्क बयान किया गया है, क्योंकि इस जमाने में अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का दौर दौरा था, इसलिए उसका 10वां हिस्सा 10वां छोड़ने वाला भी हलाक था। लेकिन आखिरी दौर में जब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का चर्चा ना होगा, तो अगर कोई शख्स 10वां हिस्सा भी करेगा तो निजात पाएगा। इसी फर्क को एक जगह यूं इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में मेरी सुन्नत को थामे रखा हो, उसके लिए 100 शहीदों का सवाब होगा, ठीक है। कुछ हदीसों में एक शहीद का सवाब आया है और कहीं पे 100 शहीदों का सवाब भी आया है, यानी मतलब उसका ये है कि बहुत ज्यादा सवाब होगा उस जमाने में सुन्नत को जिंदा करना। चुनाचे हदीस वाला में सुन्नत के आखिरी हिस्से वालों के लिए बशारत है। एक जगह बहैसियत मजमुई इरशाद आदि है कि मेरी उम्मत का हाल बारिश की तरह है कि जिसके बारे में मालूम नहीं कि उसका अव्वल बेहतर है या आखिर उसका बेहतर है, ठीक है। तो एक वेग सी चीज नबी सल्लल्लाहु ने छोड़ दी, ये नहीं फरमाया कि वो ज्यादा बेहतर होंगे पहले वालों से, ठीक है, बल्कि एक वेग बात करके छोड़ दी, जिससे अंदाजा ये हो गया कि इशारा कर रहे हैं कि आखिरी हिस्सा जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा इस उम्मत का। इसके बारे में भी हम पिछले क्लासों में बात कर चुके हैं। कोई सवाल हो इस हदीस के बारे में तो आप पूछ लीजिए। अगली हदीस का टाइटल है कि ऐसा वक्त भी आएगा कि आदमी को सिर्फ माल काम देगा। ये भी बड़ी यानी इबरतनाक मजमून है इस हदीस का। तो इसकी इबारत अन अबी बकर इब्ने अबी मरियम रहिमहुमा तआला काला कानत ले मिकदाम इब्ने मादी कर्ब जारियतुन तबीउल लबनी व यक्बिदुल मिकदाम फकील लहू सुबहानल्लाही तबीउल लबनी व तब ثمني فقال نعم وما بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار व तिरहमु। अच्छा, ये तवील हदीस है, तो इसका जो जो उन्होंने बात दाब के लिए रखी है, तो अभी हम उसी का तर्जुमा कर लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लयातियन्ना अलन नासी, के जरूर जरूर आएगा इंसानों के ऊपर जमानुन, एक जमाना, ला यनफाउ फीही, नहीं नफा देगा उसके अंदर, इल्लत दीनारु व दिरहमु, सवाई दीनार और दिरहम के, यानी दीनार और दिरहम के अलावा कोई चीज फायदा नहीं देगी। तो लयातियन्ना, ये डबल एम्फेसिस वाली बात है जो अब पीछे एक दफा आ चुकी है कि लाम भी ताकीद के लिए होता है, और यातियन्ना के अंदर जो आखिर में नून तशदीद वाला है ये भी ताकीद के लिए होता है। ठीक है, तो जरूर बिन जरूर आएगा। ठीक है, बिकॉज असल में वर्ब क्या है इसके अंदर? ठीक है, कोई आप मुझे बताएगा कि असल में वर्ब इसके अंदर क्या है? बाकी तो एम्फेसिस के लिए चीजें है ना, तो वर्ब जो है वो क्या है इसके अंदर? ठीक है, क्योंकि एक बहुत बहुत अहम वर्ब है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान और हदीस में। तो असल में वर्ब क्या है? जब आपसे पूछे कि वर्ब क्या है, तो उसका जवाब होगा माजी और मुजारे। ठीक है, इसका माजी क्या होता है, इसका मुजारे क्या होता है? ठीक है, हाँ, अता याती। ठीक है, अता बस एक ही ता काफी है, इससे अता नहीं होगा, अता याती, इतियानन। ठीक है, इसका मस्दर जो है वो इतियानन होता है, और इसका इस्म फाइल होता है आतिन, अता याती इतियानन फहुआ आतिन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आना। ठीक है, तो जरूर बिल जरूर आएगा, चलिए माशाल्लाह आप लोगों ने इसको याद रखा है, बहुत खुशी हुई। जरूर बिल जरूर आएगा, अलन नासी, इंसानों पर, जमानुन, एक जमाना। ठीक है, तो ये पीछे भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन आ चुकी है, तो ये जमानुन फाइल बन रहा है, लयातियन्ना फेल का। ला यनफाउ फीही, तो यनफाउ क्या है? नफा यनफाउ, फतहा यफतहु, बाप से नफा यनफाउ, यनफाउ का मतलब नफा देता है या नफा देगा। ना यनफाउ, नहीं नफा देगा। ठीक है, और यहाँ फ्यूचर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर की बात नबी अलैहि सलाम फरमा रहे थे, इस वजह से फ्यूचर ही में इसको ट्रांसलेट करना चाहिए। तो नहीं नफा देगा, फी ही उसमें, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना होता है। ठीक है, अद्दीनारो व दिरहमो, दीनार और दिरहम, वाव आतिफा है। ठीक है, इस वाव आतिफा की वजह से इल्ला को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इल्ला दीनारो व इल्ला दिरहमो कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वाव आतिफा क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। ठीक है, पीछे के इफेक्ट को आगे कंटिन्यू कर देता है, तो इल्ला दीनारो व दिरहमो। ठीक है, अच्छा, दीनार सोने का और दिरहम चांदी का होता था, तो ये पुराने जमाने में ही सिक्के चला करते थे सोने और चांदी के, और इनकी वैल्यूज भी जो होती थी वो ज्यादा होती थी, यानी सोने की वैल्यू तो वैसे अभी भी है, लेकिन चांदी की वैल्यू जो है वो अब मार्केट के अंदर बहुत घट गई है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चांदी की भी बहुत वैल्यू होती थी अगरचे के सोने से कम होती थी। अच्छा, तशरीह, इस हदीस के रावी मिकदाम बिन मादी कर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनकी बांदी उनके जानवरों का दूध बेचती थी और उससे उनका गुजारा होता था, यानी ये जो नीचे इन्होंने पूरी वो लिखी है ना सनद, तो सनद के अंदर इन्होंने ये लिखा है कि अभी बकर बिन अभी मरियम रहमहुल्लाह से ये रिवायत है कि उन्होंने कहा, यानी अबू बकर ने कहा, कानत ले मिकदाम बिन मादी कर, कि मिकदाम बिन मादी कर, ठीक है, ये एक सहाबी थे, उनके लिए थी एक बांदी, जारिया कहते हैं बांदी को, ठीक है, यानी शी स्लेव, तबीउल लबनी व यकबिजुल मकदामा, कि वो उनके बेचती थी उनके जानवरों का दूध। ठीक है, और उससे उनका गुजारा होता था, यानी मकदाम उसके ऊपर कब्जा करते थे, यानी मकदाम के जानवर होते थे ना, तो जो वो जानवर का दूध बेचती थी तो मकदाम की कमाई होती थी इस तरीके से। फकीर लहू, तो उनसे कहा उसने, लोगों ने, यानी ऊपर जैसे तर्जुमा लिखा है कि लोगों ने हजरत मकदाम को ताना दिया कि तुम दूध को फरोख्त करवा कर उसकी कीमत को खाते हो, हालांकि बेहतर यह है कि दूध मुफ्त में ही फुकरा मसाकीन को तकसीम किया जाए, यानी मकदाम को लोगों ने इस तरह से कहा कि तुम ये दूध को बेच के खाते, कीमत क्यों उसको खाते हो। तो इस पर हजरत मकदाम ने जरूरत, उन्होंने फरमाया कि इसमें कोई शरी नुकसान तो नहीं है, ना तो ये हराम है और ना ही मकरूह है। और ये मेरी जरूरत के पेश नजर है, किसी माल की लालच की बिना पर नहीं है। यानी मैं कोई बहुत अमीर होने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जानवरों का दूध बेच रहा हूँ। तो इसमें कौन सा, ये शरीयत ने हराम तो नहीं करार दिया इसको? फिर इस पर हजरत मकदाम रजा तआला अन्हु ने हदीस बाला सुनाई कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जिसकी पेश गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि आदमी की तमाम तर कोशिश माल के जमा करने में लगेगी और वो समझेंगे कि इससे परेशानी दूर होगी, मगर वो परेशानी तो उनके अमाले बद की नहुसत की वजह से होगी, वो माल के जमा करने से कैसे होगी? जब तक कि वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो ना हो, वो परेशानी उनसे दूर ना हो सकेगी, मगर वो ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, यानी इस हदीस का पहला हिस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई चीज फायदा नहीं देगी सिवाय दीनार और दिरहम के। यानी लोग ऐसा समझेंगे कि दीनार और दिरहम जितना हमारे पास होंगे ना, उतना हमें फायदा हासिल होगा। और फायदा हासिल होने का मतलब क्या होगा कि सिर्फ जरूरत पूरी होनी नहीं, बल्कि हमारी ख्वाहिशात पूरी होंगी और हमारी मुसीबतें टलेंगी, जितना हमारे पास माल पैसा होगा। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि माल पैसा जो है वो उससे मुसीबतें नहीं टलती हैं। ठीक है, मुसीबतें आती किसी और वजह से हैं, और वो टलेंगी भी जब आप उस वजह को दूर करेंगे। ठीक है, लेकिन एक ना मानने वाले इंसान की समझ में ये बात नहीं आती है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो माल पैसा ही जमा करना है और माल पैसे से ही मेरी मुसीबत टलेगी। तो ये उसकी यानी ईमान की कमजोरी होती है कि हमें अल्लाह ताला के मुश्किल कुशा होने के ऊपर ईमान नहीं होता कि अल्लाह ताला मुश्किल को हटाने वाले हैं, मुश्किलात को हमसे उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चूंकि हम अल्लाह ताला के इस सिफत को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, हमें मार्फत हासिल नहीं है अल्लाह ताला की इस सिफत की, तो इस वजह से हम जो है वो मुश्किल कुशाई के लिए दूसरी अतराफ में देखते हैं और असबाब की तरफ हमारी निगाहें जमी रहती हैं। लेकिन ईमान हमें ये कहता है कि तुम्हारी निगाहें जो है वो असबाब के ऊपर जमी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी निगाहें मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर जमी रहनी चाहिए, जो कि असबाब का बनाने वाला है। तो अल्लाह ताला है मुसब्बिबुल असबाब, और अल्लाह ताला को जब तुम राजी करोगे तब अल्लाह ताला असबाब ऐसे क्रिएट कर देंगे कि तुम्हारी मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी और तुम्हारे लिए राहतें और आसानियां भी पैदा हो जाएंगी। तो असल में तो ये सोल्यूशन है, यही डायग्नोसिस है प्रॉब्लम का। जैसे कि पिछली भी हदीस के अंदर हमने पढ़ा था कि दो हदीसें पहले कि जो खुबुद दुनिया है वो है असल कॉज प्रॉब्लम्स का, तो उसका हल जो है वो उस खुबुद दुनिया का इलाज करना है। तो इस रास्ते के ऊपर इंसान चल नहीं पाता क्योंकि वो उसको बहकाने के लिए शैतान जो है वो मुस्तकिल यानी एड़ी चोटी का जोर लगा के रखता है कि उसको इस करेक्ट डायग्नोसिस तक पहुंचने ना दे। ठीक है, तो जाहिर है जब शैतान मुस्तकिल इस मेहनत के अंदर लगा रहेगा और आप जो है वो शैतान से तो भाग नहीं सकते, तो इस वजह से फिर आप उसकी इस मेहनत का शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे वाली हदीस है कि जिसका मौजू उन्होंने लिखा कि कपड़ा इसका मौजू ने लिखा कि कपड़ा पहनने वाली बाज औरतें बरहना होंगी। ठीक है, तो इसकी इबारत इस तरह से बनती है कि काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनफानी मिन अहले नारी लम अराहुमा कौमुन माहुम सियाकुन का अज़नाबिल बकरी यगरिबून बिहन्नासा व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुउसुहुन्ना कअनिमतिल बुख्तिल माइलती ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रीहा तूजदु मिन मसीरती। बामुहावरा तर्जुमा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों के दो ग्रोह ऐसे हैं कि मैंने उन्हें नहीं देखा, यानी हमारे जमाने में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। ठीक है, तुम जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मैं उनको कैसे देखूंगा, राइट? एक ग्रोह तो उन लोगों का है कि जिनके हाथों में गाय की दुम के मानिंद कोड़े होंगे जिससे वो लोगों को नाहक मारेंगे, और दूसरा ग्रोह उन औरतों का होगा जो बजाहिर कपड़े पहने हुए होंगी मगर हकीकत में वो अपनी तरफ मायल होंगी, उनके सर के बाल, यानी सर से मुराद सर के बाल, बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह होंगे। ऐसी औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना जन्नत की बू पाएंगी। हालांकि जन्नत की बू इतनी 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 मुसाफत से भी आती है, यानी बहुत ज्यादा दूर से भी जन्नत की बू आती है। जैसे कि अगर गर्मियों का मौसम हो और आप किसी 5 स्टार होटल के सामने खड़े हो, तो स्पेशली हरम में ऐसा बहुत होता है ना, कि हरम के दरवाजे में अभी आप उस तरफ जा रहे हैं, हरम के अंदर फुल ब्लास्ट पे एसी चल रहा होता है, ठीक है, तो एसी की जो ठंडक होती है वो हरम के बाहर से भी महसूस की जा सकती है, क्योंकि इतना पावरफुल एसी होता है, ठीक है। अभी आप दरवाजे में दाखिल हुए भी नहीं होते हैं, फिर भी। तो इसी तरह से जन्नत की जो खुशबू है, जन्नत की जो ठंडक है, वो जन्नत से बहुत ज्यादा दूर तक उसका असर पहुंचता है। लेकिन ये औरतें इतनी दूर होंगी जन्नत से कि इनको जन्नत की खुशबू तक नहीं पहुंचेगी। जन्नत के करीब पहुंचना तो दूर की बात है। अच्छा, इसकी लुगात है तो ये थोड़ी सी लंबी हदीस, तो शुरू करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिनफानी, तो सिनफुन ये वाहिद का सीगा हुआ और सिनफान ये डुअल का सीगा हुआ, तस्निया। उर्दू में, अरबी में तस्निया कहते हैं, अंग्रेजी में डुअल कहते हैं, ठीक है। तो ये था सिनफानी, ठीक है, तो सिनफुन का ये डुअल है सिनफानी। ठीक है, तो ये जो डुअल है ना, ये आप लोगों को शायद मैंने चार्ट भेजा था कि जैसे आबिदुन है ना, इसम फाइल, ठीक है, तो इसम फाइल आबिदुन है, तो इसका डुअल क्या होता है, आबिदानी, दो इबादत करने वाले, ठीक है, आबिदुन एक इबादत करने वाला, आबिदानी दो इबादत करने वाले। तो बिल्कुल इसी तरीके से सनफुन जो है ना, ये इसम फाइल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक इसम है, ठीक है, और इस इसम का ड्यूअल भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से आबिदुन का ड्यूअल बनाया था आनी लगा करके आखिर में, ठीक है। तो सिनफानी यानी दो सिनफें, दो टाइप्स, ठीक है, दो टाइप्स या दो ग्रोह या दो सिनफ, सिनफें उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मिन अहले नारी, जहन्नुम के लोगों में से, ठीक है, अहले नार, अहल का लफ्ज अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी जहन्नुम वालों में से। लम अरा हुमा, ठीक है, लम अरा, लम जो है ये तो एक हर्फ होता है, ठीक है, इसको नफी जहद कहते हैं, ठीक है, लम को क्या कहते हैं, नफी जहद, जीम हा बड़ी वाली हा दाल, ठीक है, नफी जहद ये लम होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये तीन चार काम करता है, किसी को याद है उसमें से कुछ जो ये करता है, लम क्या क्या करता है?
जर।
फेले मुजारे पर दाखिल होता है और माशाल्लाह निगेट करता है उसको, ठीक है, क्योंकि फेले मुजारे तो पॉजिटिव चीज होती है ना, कि ऐसा होगा या ऐसा होता है, ठीक है, पॉजिटिव है ये, तो इसको ये निगेट कर देता है, नंबर वन। नंबर टू ये क्या करता है कि फेले मुजारे बाई डिफॉल्ट हालत रफा में होता है, तो ये उसको हालत किसमें डालता है, जजम में डाल देता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात किसी को याद, एक तो हो गया नेगेट कर दिया, दूसरा हो गया हालत रफा से हालत जजम में इसको डाल दिया, ठीक है, और तीसरा काम क्या करता है, फेले मुजारे का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो इसको पास्ट टेंस के मानी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यानी मानी जो निकलेगा अब पास्ट टेंस का निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या था, अरा, ये लफ्ज था अरार, असल में ये था अराया, और फिर या को साकिन कर दिया तो ये बन गया अरा, आखिर में अलिफ मकसूरा भी था इसके, ठीक है, लेकिन जब लम लगाना तो लम ने इसको हालत जजम में डाल दिया, ठीक है, तो इस वजह से ये, एक मिनट, नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ, हाँ, हाँ ये अरायू था, अरायू था, ठीक है। अच्छा ये फेले मुजारे हैं पहली बात तो, ठीक है। तो ये अरा यरा नहीं है, ये अरा नहीं है, ये माजी नहीं है, बल्कि ये मुजारे हैं। तो ये था असल में, ये क्या था, यरा यरा। यरा क्या होता है, जरा जो है वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, कि उसने देखा या नहीं, वो देखता है। जरा का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जरा को जब आप गदान में चलाते हैं तो ये क्या, किस तरह चलती है, जरा यरा यरा याने यरौना, तरा तरा याने यरौना, तरा तरा याने तरौना, तरैना तरा याने तरौना, अरा नरा, ठीक है। तो अरा क्या है, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब ये गर्दान में सेकंड लास्ट टेंस बनता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का, तो ये था अराया, लम लगने से ये सिर्फ अरा रह गया, ठीक है, या गिर गया टोटली, ठीक है। तो सिर्फ ये लम अरा रह गया, कि नहीं देखा मैंने हुमा, हुमा ये जमीर है, और ये किसकी तरफ पॉइंट करती है, ये डुअल की तरफ पॉइंट करती है, ठीक है। यानी दो सिंफों की बात हो रही है ना, कि नहीं देखा मैंने उन दोनों को, ठीक है। तो ये डुअल वाली जमीर है। तस्मिया
कोई
मुबक्कर व मुअन्नस
जानता
म्यूट कर लीजिए।
अब
तो हुमा की जमीर जो होती है वो वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस गायब, ठीक है। तो नहीं देखा मैंने उन दोनों को। कौमन, एक कौम, यानी इन दोनों में से एक कौम, एक जमात, वो क्या होगी, माहुम साथ उनके, माँ का मतलब होता है ना साथ, और हम की जमीर इसके साथ जुड़ी हुई है, तो साथ उनके, ठीक है, माहुम साथ उनके। सियातुन, सियात, सियात क्या है, नीचे लुगात में लिखा हुआ है कि ये जमा है सौत की, ठीक है। ये जमा है सौत की, ठीक है, और सौत का मतलब क्या होता है, कोड़ा, सौत अदाब, ठीक है, अदाब का कोड़ा, सूरह फजर के अंदर ये आता है, ठीक है। तो सौत कहते हैं कोड़े को, चाबुक को, हुक्का, सखी, पानी जमा होने की जगह, उसको भी कहते हैं सयाद यहाँ, लेकिन यहाँ पर मुराद जो है वो कोड़ा या चाबुक है, ठीक है। माजी भी बता दिया उन्होंने कि ये साता यसूतु से निकला है, साता यसूतु सौतन, कोड़े मारना, ठीक है। तो खैर सयाद जो है वो कोड़ों को कहते हैं। कअज़नाबिन, काफ जो है वो तशबीह के लिए है, ठीक है, काफ तशबीह के लिए हर्फ जर होता है ये। अज़नाब, अज़नाब क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है कि ये जमा का सीगा है, और इसका वाहिद क्या होता है, जनबी या जनब, ठीक है। और अगर जानवरों के लिए जनब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो उसको कहेंगे दुम, ठीक है। तो जनबी मिनल हैवानी, यानी जनबी मिनल हैवानी अगर कहा जाएगा ना तो दुम मुराद होगी, क्योंकि हैवान जानवर को कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप जानवर के लिए अजनाब का लफ्ज इस्तेमाल करें तो दुम मुराद होगी, ठीक है। और अगर आप इंसानों के लिए अजनाब का लफ्ज इस्तेमाल करें तो इंसानों की तो दुम नहीं होती है ना, तो फिर क्या मुराद होगी अजनाब की, कि जो मामूली लोग होते हैं, यानी जो पीछे पीछे रहने वाले लोग होते हैं, मामूली किस्म के लोग, ठीक है, तो वो मुराद होंगे, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है कि का अजनाबिल बकरी, तो चूंकि बकर जानवर है तो इस वजह से यहाँ पर अजनाब से मुराद दिया जाएगा दुम, बकर की दुम, बकर जो है वो गाय को कहते हैं, ठीक है। तो गाय की दुम जैसे कोड़े, गाय की दुम जैसे कोड़े, ठीक है। सयातुन का अजनाबिल बकरी, यज़रिबूना बिहन नासा, वो मारेंगे उससे इंसानों को, ठीक है। दरबा यज़रिबू, तो यद्रिबु को गदान में चलाएं तो यद्रिबु यद्रिबाने यद्रिबुना, यानी वो मारेंगे, बिहा उससे, तो बा हर्फ जर है और हा की जमीर किधर पॉइंट कर रही है, सियातुन की तरफ, ठीक है, कोड़ों की तरफ, बिहा। अन्नासा ये इसका मफूल बन रहा है, या द्रिबुना का, तो मारेंगे उससे लोगों को, ठीक है। कोई सवाल है इन अल्फाज के बारे में? सिनफान, मिन, अहले नार, फिर अराहो, अराहुमा एक जरा सा मुश्किल वर्ड था, कोई सवाल उसके बारे में? कौमुन ये नकरा है क्योंकि इसको तमी पड़ी हुई है, तो एक फॉर्म से इसका इसका तर्जुमा करेंगे। माहुम साथ उनके, सयातुन सऊद की जमा है, ठीक है, काजना बिल बकरे यद्रबुना बिहन नासा, ठीक है। तो ये तो पहली सिंफ की बात हो गई, ठीक है, इन दो सिंफों में से पहली सिंफ कवर हो गई। दूसरी सिंफ क्या है? वह निसाउन, ये निसाउन जो होता है वो इमरातुन की जमा होती है। एक एक औरत को इमरातुन कहते हैं और औरतों को निसाउन कहते हैं, ठीक है। तो निसाउन मतलब औरतें। कासियातुन, आरियातुन, मुमीलातुन, माइलातुन, ठीक है, इन औरतों की चार सिफात बयान फरमा रहे हैं, ठीक है। पहली है कासियातुन, तो कासियातुन जमा है कासियतुन की, और ये कहाँ से निकला? कसिया यक सयू, समिया यस्मऊ बाप से, कसिया यक सयू, कसन बमानी पहना, ठीक है। तो कासियातुन का तर्जुमा फिर क्या हुआ कि वो पहनी भी होंगी, ठीक है। ये कासियातुन है क्या असल में, ठीक है, ये इसम फाइल का सीगा है, ठीक है, पहनने वाली या पहनने वालियां, एक्चुअली इसम फाइल का ये जमा मुअन्नस का सीगा है। कासियातुन, ये सारी सारी जो है ना, ये चार अल्फाज, इन सब का सीगा क्या है? जमा मुअन्नस इसम फाइल, ठीक है, जमा मुअन्नस इसम फाइल। तो कासियातुन हुआ पहनने वालियां, यानी वो ड्रेस्ड अप होंगी, ठीक है। लेकिन हरियातुन, ये आरियुन की जमा मुअन्नस है। आरी किसको कहते हैं? जो कि नंगा हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ये तो अकल से आरी है, तो अकल से नंगा, ठीक है, ये लिबास से आरी है, यानी लिबास से नंगा है, ठीक है। तो आरियुन की जो मुअन्नस होती है वो आरियतुन होती है, और आरियतुन की जमा जो है वो आरियातुन होती है, तो आरियातुन का मतलब नंगी, ठीक है। मुमीलातुन, मुमीलातुन ये भी इसम फाइल का ही सीगा है, जमा मुअन्नस, ठीक है, लेकिन ये इस बाबे इफाल से आता है, अमाला यमीलू इमालतन फहुआ मुमीलुन, ठीक है। तो जरा डिफरेंट डिफिकल्ट बाब से आता है मुमीलातुन, ठीक है। तो मुमीलातुन का मतलब क्या होता है कि यानी अपनी तरफ मायल करने वाली, और माइलातुन दूसरों की तरफ मायल होने वाली, ठीक है। तो मुमीलातुन जो है ये भी इसम फाइल का सीगा हुआ लेकिन जमा मुअन्नस, और माइलातुन ये भी इसम फाइल का सीगा हुआ जमा मुअन्नस, ठीक है। तो यहीं तक हम रखते हैं आज की क्लास को, और बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसका तर्जुमा मुकम्मल करके फिर इसकी तशरीह देखेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है आज की क्लास के बारे में तो भी पूछ लीजिए। चलो खत्म करते हैं, अस्सलाम वालेकुम।